नूर के घर भी सब कुछ बाहर से सामान्य ही लग रहा था। ना फैजान आया। असल में नूर ने फैजान का नंबर ब्लॉक कर दिया था और अब उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं बचा था। वैसे भी उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी तो वो अपनी लाइफ में बिजी था, लेकिन ये सन्नाटा जितना शांत दिख रहा था अंदर ही अंदर उतना ही खतरनाक था। एक तरफ केस हाथ से फिसल रहा था और दूसरी तरफ दुश्मन खामोशी से चालें चल रहा था। इकबाल की केस में जैसे वक्त ठहर गया था। किरायेदार घर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था और हर बार की तरह फिर वही तारीख पर तारीख। इकबाल हर सुनवाई पर उम्मीद लेकर जाता और खाली हाथ लौट आता। वकील हर बार यही कहता, अगली तारीख पर फैसला हो जाएगा। लेकिन इकबाल नहीं जानता था कि उसका केस अब उसका रहा ही नहीं, क्योंकि उसका वकील पहले ही बिक चुका था रेहान के हाथों। उधर शहर से दूर फैजान की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी थी। जिस लड़के को कभी घर से निकाल दिया गया था, आज वही लड़का SDM बनकर उसी शहर में लौट आया था। किसी को खबर तक नहीं थी कि अब खेल बदलने वाला है। रेहान अपने घर के हॉल में बैठा था, फोन कान से लगाई ठंडी आवाज में बोला, अगली तारीख कब की है? तभी फरीद खान अंदर आया और टीवी की ओर इशारा करते हुए बोला, देखा तुमने ग्रेफूड कंपनी के साथ क्या हुआ? टीवी स्क्रीन पर खबर चल रही थी, एक बड़ी फूड कंपनी के गोदाम में भीषण आग लग गई थी। तभी पीछे से आवाज आई, अरमान था अब एक सफल बिजनेसमैन जिसका चाइनीज रेस्टोरेंट शहर में खूब चल रहा था। वो मुस्कुराते हुए बोला, जब बैकअप प्लान नहीं था तो रिस्क क्यों लिया? ये आग उन्होंने खुद लगवाई थी, उनका बहुत सारा सामान एक्सपायर हो चुका था, बेच नहीं सकते थे, इंश्योरेंस का पैसा भी मिलेगा और नुकसान भी कवर हो जाएगा। लेकिन अरमान ने कहा, कई मजदूर अंदर फंस गए थे, ये मामला इतना आसान नहीं है। रेहान ने फोन काट दिया, उसकी आंखों में एक अलग ही खेल चल रहा था। पैसे से सब संभल जाएगा, उसने धीमे से कहा। फिर फरीद खान बोला, लेकिन मैंने सुना है इस बार शहर में जो नया ऑफिसर आया है वो इतना आसान नहीं है। मैं मानता हूँ हर किसी की एक कीमत होती है, अरमान ने धीमे लेकिन यकीन भरे लहजे में कहा। रेहान ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, कीमत सबकी होती है, बस कोई जल्दी बिक जाता है कोई देर से। अरमान ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, लेकिन सुना है जहां आग लगी थी वहां वो खुद पहुंच गया था, फायर ब्रिगेड की भी मदद की, लोगों को अंदर से निकलवाया। रेहान ने कंधे उचकाए, हाँ पहुंचा था, टाइम पर पहुंच गया, हीरो बन गया सबकी नजरों में। फिर उसने थोड़ा झुक कर कहा, ये सब तरीके होते हैं अपनी कीमत बढ़ाने के। अरमान कुछ कहने ही वाला था कि रेहान खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। तुम अभी बच्चे हो इसलिए नहीं समझते कि असल में क्या खेल चल रहा है। अरमान ने उसके हाथ की तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में, वो नजरें जैसे चुपचाप कह रही थीं, वक्त खुद बता देगा। एक पल की खामोशी के बाद फरीद खान उठकर वहां से चला गया। उसी वक्त सादिया वहां आई, उसके हाथ में कॉफी के दो कप थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ रेहान की तरफ कप बढ़ाया, आपके लिए। फिर अचानक उसकी नज़र अरमान पर पड़ी, वो थोड़ा ठिठकी और फिर हल्के तंज भरे अंदाज में बोली, ये चांद आज कहाँ से निकल आया, बड़ी देर बाद इस तरफ आए हैं आप। अरमान के होठों पर हल्की मुस्कान आई, कैसी हो तुम? सादिया ने नजरें हटाते हुए जवाब दिया, ठीक हूँ, लेकिन उसकी आवाज में वो सुकून नहीं था जो शब्दों में दिख रहा था। इसी बीच रेहान के फोन पर एक मैसेज आया, उसने स्क्रीन पर नजरें टिकाई और उसका चेहरा अचानक थोड़ा गंभीर हो गया। क्या हुआ? अरमान ने पूछा, लेकिन रेहान बिना जवाब दिए ही वहां से उठकर थोड़ा दूर चला गया। अरमान ने हल्का सा भौहें से कोड़कर सादिया की तरफ देखा, सब ठीक तो है? सादिया ने नजरें चुराते हुए कहा, पता नहीं, आजकल थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। सादिया हल्का सा मुस्कुराई, मगर उस मुस्कान में चुभन थी। तुमने एंगेजमेंट कर ली, हमारा वेट भी नहीं किया, अपसेट हो गए हैं तुमसे? अरमान ने उसकी तरफ देखा। तभी रेहान वापस आ गया। अरमान ने सीधे उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप मेरी जल्दी एंगेजमेंट करने पर मुझसे नाराज हो गए हैं क्या? रेहान ने भौहें चढ़ाई, क्या हो गया है तुम्हें? मैं कोई बच्चा हूं जो इस बात पर नाराज हो जाऊंगा? उसने हल्की हंसी के साथ आगे कहा, मैं खुश हूं तुम्हारी एंगेजमेंट हुई है, और भूल रहे हो क्या, ये रिश्ता मैंने ही कराया है, वो लड़की मेरे ही दोस्त की बहन है। अरमान ने थोड़ी गंभीरता से कहा, मुझे अभी अभी सादिया ने दबाया, सच में नाराज नहीं हो आप? रेहान कुछ बोलता उससे पहले ही सादिया ने धीरे से कहा, मैंने कुछ गलत नहीं कहा। रेहान ने अचानक उसकी तरफ तीखी नजर से देखा, अरमान इसकी चीप मेंटालिटी को समझ नहीं आता है। उसकी आवाज अब ठंडी और सख्त थी। एक पल के लिए माहौल जमसा गया। असल में ये पहली बार नहीं था, जब से वो लोग विदेश से लौटे थे रेहान का रवैया बदल गया था। वो अक्सर किसी न किसी बहाने सादिया को ताना दे देता था। पहले ये बातें सिर्फ कमरे तक सीमित थीं, लेकिन आज वो सबके सामने उसे नीचा दिखाने लगा था। सादिया चुप खड़ी थी, लेकिन उसकी खामोशी में अब दर्द साफ दिखाई दे रहा था। मुझे काम है, इतना कहकर रेहान ने अपनी कॉफी उठाई और बिना पीछे देखे वहां से चला गया। उसके जाते ही एक अजीब सी खामोशी छा गई। अब वहां सिर्फ अरमान और सादिया रह गए थे। सादिया धीरे से कुर्सी पर बैठ गई, चेहरे पर उसने वही सामान्य स्वभाव रखा हुआ था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह हिल चुकी थी। दूसरी तरफ खलील अब भी सिद्धपुर में डटा हुआ था।
इकबाल हर महीने की तरह इस बार भी तारीख की पेशी के लिए परेशान था। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, सुल्ताना बेगम ने पास बैठते हुए कहा। अगर आप कहें तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ, हम दोनों साथ चलेंगे। इकबाल ने थकी हुई सांस ली। काश इस बार फैसला हमारे हक में हो जाए, इस किराएदार और उसके गुंडों से भी पीछा छूट जाए, सुल्ताना ने धीमे से कहा। इंशाल्लाह इस बार सब ठीक होगा। उसी समय फैजान अपनी एसडीएम की पोस्ट ज्वाइन कर चुका था। ऑफिस के लैंडलाइन से उसने इकबाल को फोन मिलाया। आपका फोन नहीं लग रहा था, मैंने कई बार कोशिश की, फैजान ने कहा। इकबाल ने हल्की हैरानी से पूछा, अच्छा मुझे तो पता ही नहीं चला। असल में फैजान जानबूझकर अब तक सामने नहीं आया था। उसे पता था कि रेहान ने नूर के पीछे आदमी लगा रखा है और उसके अचानक आने से नूर की मुश्किलें बढ़ सकती थी। नूर ने भी पहले ही उसका नंबर ब्लॉक कर दिया था। अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए, फैजान ने गंभीर होकर कहा, मेरे दोस्त के पिता पुलिस में है, मैं आपके लिए इंतजाम कर सकता हूँ। इकबाल कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, नहीं बेटा, नूर को ये बात पसंद नहीं आएगी, जरूरत होगी तो मैं खुद बता दूंगा। ठीक है, फैजान ने धीरे से कहा। कुछ देर और बात करने के बाद उसने फोन रख दिया, लेकिन उसके चेहरे पर साफ था, वो दूर रहकर भी सब संभालने की कोशिश कर रहा था। सादिया अब इस बात से टूटने लगी थी कि रेहान उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगा है। उस रात वो अपने कमरे में भी नहीं गई, पूरी रात लॉन में अकेली बैठी रही। ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन उसके अंदर बेचैनी और भी बढ़ती जा रही थी। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे इस बात की थी कि रेहान उसे एक बार भी बुलाने नहीं आया। सुबह सुबह फरीद खान वॉक के लिए बाहर निकले। जैसे ही उन्होंने लॉन में कदम रखा, उनकी नजर सादिया पर पड़ी। वो चौंक गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सादिया ने हल्के से सिर उठाया। तबीयत ठीक नहीं थी, नींद नहीं आई, इसलिए यहीं बैठी रही। फरीद खान ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। और रेहान, वो कहाँ है? सादिया के होठों पर कड़वी मुस्कान आ गई। उन्हें मेरी परवाह कहाँ है? उसकी आवाज में शिकायत साफ थी। असल में वो फरीद खान से शिकायत कर रही थी, वैसे ही जैसे पहले किया करती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके थे। जब तक उसके नाम पर प्रॉपर्टी थी, फरीद खान उसे बेटी कहकर पुकारते थे। अब जब सब कुछ उससे छिन गया, उन्हें सादिया में वही अपनापन नजर नहीं आता था। फरीद खान ने अचानक ऊंची आवाज लगाई, रेहान। उनकी आवाज में गुस्सा था या दिखावा,
ये समझना मुश्किल था।